अध्याय चार, मार्क्सवादी दृष्टिकोण या वर्ग दृष्टिकोण। राजनीति के अध्ययन के लिए वर्ग दृष्टिकोण के अर्थ प्रकृति की व्याख्या कीजिए, अथवा राजनीति के प्रति मार्क्सवादी विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और विवेचना कीजिए कि राजनीति के अध्ययन में वर्ग दृष्टिकोण का प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण या वर्ग दृष्टिकोण मुख्य रूप में कार्ल मार्क्स और एलेनसेस के विचारों पर आधारित है। इसको मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आगे व्याख्या विकास और प्रयोग पहली बार लेनिन के द्वारा किया गया था और फिर बाद में स्टालिन और माओ से तुंग द्वारा। इसको वर्ग दृष्टिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राजनीति का अध्ययन दो आर्थिक वर्गों, धनवान अर्थात अमीर वर्ग और निर्धन वर्ग अर्थात गरीब वर्ग, या स्वामी और श्रमिक के संबंधों के आधार पर करता है। यह इस विचार पर आधारित है कि राजनीतिक संबंधों को दो आर्थिक वर्गों के बीच में आर्थिक या उत्पादन संबंधों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्येक समाज में विद्यमान होते हैं और जो सभी संबंधों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि के सच्चे निर्धारक होते हैं। सभी राजनीतिक प्रक्रियाएं प्रभावी वर्ग के द्वारा अपने अधीनस्थ वर्ग पर अपने अधिकार जमाए रखने के प्रयासों या दबे हुए के द्वारा अपनी गुलामी की जंजीरों को उतार फेंकने का प्रतिनिधित्व करती है। आलमंड और पॉवेल ने इस दृष्टिकोण के विचार की संक्षेप में इस प्रकार व्याख्या की है। मार्क्सवादी सिद्धांत ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि समाज की वर्ग संरचना ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और प्रक्रिया और समाज और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इसकी कार्यात्मकता को सदैव निर्धारित किया है। वर्ग दृष्टिकोण प्रमुख विशेषताएं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दो प्रमुख स्तंभों के रूप में मूल्य और क्रिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारभूत विशेषताएं आधुनिक राजनीतिक विज्ञानियों के द्वारा विकसित आधुनिक वैज्ञानिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से बहुत अलग है। आधुनिक दृष्टिकोण जहाँ राजनीति के अनुभविक और मूल्य रहित अनुसंधान और सिद्धांत की वकालत करता है, वहाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत से मूल्यों, जिस प्रकार की ही वास्तविकता है, पदार्थ विकासवादी होता है, इसकी विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक होती है, इतिहास का निर्धारण भौतिक शक्तियों के द्वारा होता है, संघर्ष अमीरों और गरीबों के बीच संबंधों का वास्तविक स्वरूप है, समाज अपने अंतिम उद्देश्य वर्ग रहित और राज्य रहित समाज अर्थात सामाजिक उन्नति की अंतिम और आदर्श स्थिति की ओर विकसित होता है आदि पर आधारित है। यह एक मूल्यात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण है जो न केवल मूल्यों का उल्लेख करता है बल्कि उनको पहचानने और प्राप्त करने के लिए ढंग और मार्ग भी निर्देशित करता है। यह इन प्रश्नों को समझने और इनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है, क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा और सामाजिक विकास का अंतिम स्तर क्या होगा। साथ ही यह निर्धारित ढंगों के विज्ञान की धारणा को स्वीकार करता है, परंतु यह वैज्ञानिक विश्लेषण से भी उतना ही संबंधित है जितना कि मूल्यात्मक धारणा से। अन्य दार्शनिकों से अलग इस सिद्धांत का उद्देश्य केवल समाज को समझना ही नहीं बल्कि इसको बदलना भी है। दूसरा, माओ से तुंग ने अपने निबंध में लिखा, मार्क्सवादी दर्शन जिसको सबसे महत्वपूर्ण समस्या मानता है यह दुनिया के वस्तुनिष्ठ कानूनों को समझना और फिर उनको वर्गीकृत होने के लिए योग्य होना नहीं है, बल्कि इन वस्तुनिष्ठ कानूनों के ज्ञान का प्रयोग करके इसको सक्रिय रूप से परिवर्तित करना भी है। मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयास ऐतिहासिक उन्नति और सामाजिक परिवर्तन के वस्तुनिष्ठ कानूनों को खोजना है, परंतु साथ ही वर्ग शोषण की समाप्ति करके क्रांति लाने के लिए कार्य करने को भी मान्यता देना है, ताकि समाजवादी समाज वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की ओर तीव्र प्रगति की जा सके। तीसरा, सिद्धांत और माध्यम में गहरा संबंध। मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि सिद्धांत और अभ्यास का परस्पर गहरा संबंध है। सिद्धांत को अभ्यास में अवश्य बदलना चाहिए, नहीं तो यह व्यर्थ हो जाता है। क्रांतिकारी सिद्धांत का लक्ष्य क्रांतिकारी आंदोलन का निर्देशन और नेतृत्व करना है। यह सिद्धांत अर्थरहित होता है जो वास्तविक अभ्यास में परिणाम देने के योग्य न हो। सिद्धांत का मूल्य तब ही होता है यदि उसको लागू किया जा सके। लेनिन कहते हैं, क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। माओ के शब्दों में, यदि हमारे पास एक उचित सिद्धांत है परंतु हम उसके बारे में केवल जानते ही हैं और उसको हवा में लटकाए रखते हैं और उसको प्रयोग में नहीं लाते, तो यह सिद्धांत चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो कोई महत्व नहीं रखता। ज्ञान अभ्यास से शुरू होता है, अभ्यास के माध्यम से सैद्धांतिक स्तर तक पहुँचता है और फिर अभ्यास पर वापस आ जाता है। इसलिए सिद्धांत और अभ्यास के बीच गहरा संबंध मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। राजनीति के प्रति मार्क्सवादी विचार। राजनीतिक संबंध आर्थिक संबंधों की उपज है। राजनीति की मार्क्सवादी धारणा राजनीति के पश्चिमी गैर मार्क्सवादी विचार से बिल्कुल अलग है। जहां आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति की शक्तियों के लिए संघर्ष की एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, जिसमें सभी व्यक्ति तथा समूह शामिल होते हैं और जो संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक मूल्यों का निर्माण करती है और उनको लागू करती है। वहाँ मार्क्सवादी सिद्धांत राजनीति को दो आर्थिक वर्गों, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, के बीच आर्थिक या उत्पादन संबंधों की उप उपज मानता है। जिनके पास है जिनके पास नहीं है पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और उनका शोषण करने के लिए कानूनों, नियमों और परिणामों के रूप में राज्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया को जिनके पास है और उनके द्वारा जिनके पास नहीं है उनके शोषण करने के लिए और उनको अपने उत्तम नियंत्रण के अधीन रखने की संरचना बनाते हैं। राज्य एक वर्ग संस्था है। राज्य संपन्न लोगों की रचना है। वह अमीरों के हाथ में गरीबों का शोषण करने के लिए शोषण का एक उपकरण है। राज्य एक प्राकृतिक सामाजिक संस्था नहीं है। यह वर्ग संस्था है और अमीरों का एक उपकरण है। यह गरीबों का शोषण करने के लिए एक विशेष स्थिति में अमीरों के द्वारा रचित एक उपकरण या मशीन है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विचारात्मक आधार। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन है जो प्रकृति, जीवन और समाज की सभी प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए दार्शनिक रूप में कार्य करता है। मार्क्स ने इसको हीगल से लिया, पर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी पुनर्रचना की। जहाँ हीगल का यह मत था कि जो मूल है वह विचार है और पदार्थ विचारों की परछाई होती है, वहाँ मार्क्स ने यह कहा कि वास्तविकता इसके विपरीत कुछ और है। जहाँ हीगल ने द्वंद्वात्मक तर्क को विचारों के क्षेत्र में लागू किया, वहाँ मार्क्स ने द्वंद्वात्मक तर्क के नियमों को अपनाया और उनको पदार्थ के क्षेत्र में लागू किया। दूसरा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समाज के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रदान करता है। यह सिद्धांत मार्क्स और एंजल्स की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम देन है। इस सिद्धांत का तत्व राजनीतिक घटनाओं के अपने अंतिम कारकों अर्थात आर्थिक कारकों के प्रभावी प्रभावों को की पृष्ठभूमि में ले जाकर इनका विश्लेषण करना है। अपने अस्तित्व के सामाजिक उत्पादन के साधनों के उत्पादन के में लगे व्यक्ति कुछ विशेष संबंधों में प्रवेश करते हैं जो उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन संबंध जो भौतिक उत्पादन शक्तियों के विकास के एक विशेष स्तर के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादक संबंधों का कुल जोड़ समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करता है। एक वास्तविक आधार जिस पर न्यायिक और राजनीतिक संरचनाएं आधारित होती हैं और सामाजिक चेतना का निश्चित रूप से जिसके अनुरूप होता है। अस्तित्व के भौतिक साधनों के उत्पादन का ढंग सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। अपनी रचना पॉवर्टी ऑफ साइकल फिलॉसफी में आगे जाकर मार्क्स स्पष्ट करता है कि सामाजिक संबंध उत्पादक ताकतों से गहरे रूप में जुड़े होते हैं। नई उत्पादन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने उत्पादन ढंग बदलते हैं और अपने उत्पादन ढंग बदलने में अपनी आजीविका अर्जित करने का ढंग बदलने की प्रक्रिया में वे अपने सभी सामाजिक संबंध बदल लेते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मार्क्सवादी धारणा में आर्थिक निर्धारणवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत सम्मिलित हैं। आर्थिक निर्धारणवाद का मानना है कि आर्थिक कारक और संबंध सामाजिक संबंधों के अन्य सभी की प्रकृति एवं क्षेत्र के को निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार एक समय में कार्यरत भौतिक उत्पादन संबंधों का विश्लेषण करके सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण और वर्णन किया जा सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसकी विशेषताएं। उपर्युक्त विवरण से हम राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएं निर्धारित कर सकते हैं। पहला, राजनीति की जड़ें आर्थिक उत्पादन संबंधों में होती है। वास्तव में राजनीति समाज की आर्थिक संरचना के द्वारा निर्धारित की जाती है और यह इसी पर आधारित होती है। दूसरा, उत्पादन संबंध आर्थिक संबंध। दो आर्थिक वर्गों के बीच के संबंध होते हैं और वे वर्ग धनी या स्वामी वर्ग और निर्धन या श्रमिक वर्ग होते हैं। वर्ग संरचना का विश्लेषण करके हम उत्पादन संबंधों तथा इसके द्वारा राजनीतिक संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं। चौथा, जिनके पास है अर्थात अमीरों और जिनके पास नहीं है अर्थात गरीबों के बीच वर्ग संघर्ष राजनीतिक कलह या शत्रुता का कारण होता है। पांचवा, राज्य उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले वर्ग के हाथों में शोषण का एक उपकरण है। जिसके द्वारा यह वर्ग श्रमिकों का शोषण और उन पर नियंत्रण करता है। छठा, वर्ग संघर्ष का क्रम है जिसके माध्यम से समाज प्रगति करता है। अब तक हुए समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इन सभी विशेषताओं के साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीति का आर्थिक सामाजिक विश्लेषण किया जा सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का व्यवहारिक प्रयोग। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक प्रयोग बहुत से गैर पश्चिमी राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इनका महानतम और कट्टर समर्थक और प्रयोगकर्ता लेनिन रहा है। लेनिन, उसने जारवादी रूस की प्रकृति के विश्लेषण के लिए 1917 के समाजवादी क्रांति के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया। इसी प्रकार माओ ने चीन की व्यवस्था के विश्लेषण और फिर 1949 में चीन में सफल समाजवादी क्रांति लाने के लिए इस दृष्टिकोण का अनुसरण और प्रयोग किया। समूचे विश्व में साम्यवादी दल विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के विश्लेषण व अपनी नीतियों और कार्य योजनाएं बनाने के लिए समाज की वर्ग संरचना के आधार पर व्याख्या करते रहे। उदाहरण के रूप में भारत के संदर्भ में साम्यवादी दल निम्नलिखित बातों के विश्लेषण के द्वारा राजनीतिक संबंधों की व्याख्या करते रहे हैं। पहला, भारत में वर्ग संरचना की प्रकृति। दूसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों विशेषतः सत्ताधारी दल की वर्ग संरचना की प्रकृति। तीसरा, पश्चिमी समाजवाद विरोधी देशों के प्रति सरकार की नीतियां। चौथा, सामान्य रूप में समाजवादी राज्यों और विशेष रूप में गैर समाजवादी और गैर पूंजीवादी राज्यों के साथ सरकार का संबंध। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आलोचनात्मक मूल्यांकन। मार्क्सवादी दृष्टिकोण या अधिक वास्तविक रूप में वर्ग दृष्टिकोण हमारे समय का एक अत्यंत लोकप्रिय दृष्टिकोण है। समूचे विश्व के राज्यों के समाजवादी राजनीतिक वैज्ञानिक दुनिया के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही है। राजनीति की प्रक्रिया का विश्लेषण, वर्णन और इनके संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति में अनुसंधान के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग कर रहे हैं। मार्क्सवादी राजनीतिक वैज्ञानिक इसको राजनीति के प्रति एक सफल दृष्टिकोण के रूप में मानते हैं। कई एक राजनीति वैज्ञानिकों इसको राजनीति के अध्ययन के प्रति एक बहुत लाभकारी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण मानते हैं, जो सिद्धांत निर्माण के लिए बड़ा उपयोगी विषय वस्तु प्रदान कर सकता है। वास्तव में राजनीति के आर्थिक कारकों के अध्ययन महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता और न किसी को ऐसा करना ही चाहिए। राजनीतिक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण भी आर्थिक तत्वों के अध्ययन पर राजनीति का अध्ययन करता है। आलोचक इसकी निम्नलिखित सीमाएं बतलाते हैं। पहला, इसकी यह परिकल्पना गलत है कि राजनीति एक निर्भर प्रक्रिया है। यह आर्थिक संबंधों पर पूर्णतः निर्भर प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, यह दृष्टिकोण दो आर्थिक वर्गों, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, के मध्यम वर्ग संघर्ष के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण का सुझाव देते हैं, जो कि पूर्ण रूप में उचित नहीं है। तीसरा, इसका यह सुझाव गलत है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की अनंत संहिता रही है और अब भी है, और वह यह भी कहना उचित नहीं कि क्रांति वर्ग संघर्ष की स्वाभाविक और अंतिम मंजिल है। चौथा, यह मार्क्सवादी विचार की राज्य एक विशेष समय पर बनाया गया और यह उत्पादन साधनों के स्वामियों द्वारा निर्धन और दबे हुए लोगों के शोषण के साधन के रूप में अमीरों के द्वारा बनाई गई एक मशीन या उपकरण है। बहुत से लोगों को स्वीकार नहीं है गरीब और दबे हुए लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए राज्य की शक्ति कानूनों और नीतियों पर बल देने के लिए कल्याणकारी राज्य के आगमन से मार्क्स के तर्क को झुठला दिया है। पांचवा, मार्क्सवाद के विचारात्मक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के गैर वास्तविक सीमित और पक्षपातपूर्ण स्वरूप की आलोचकों के द्वारा कठोर आलोचना की गई है। छठा, आलोचकों का कहना है कि मार्क्स के द्वारा वर्ग दृष्टिकोण के प्रयोग से निकाले गए निष्कर्षों में से कुछ को तो इतिहास ने झुठला दिया है। वर्ग संघर्ष की स्वाभाविकता, क्रांति की आवश्यकता और पूंजीवाद की निश्चित समाप्ति के मार्क्सवाद सिद्धांत आलोचकों की कठोर आलोचना के विषय बने रहे हैं। वे कहते हैं कि इसकी सीमाओं के कारण ही लेनिन ने इसमें सुधार किए थे। लेनिन के पश्चात भी बहुत से साम्यवादी सिद्धांत द्वारा मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन किए गए हैं। सातवां, अंत में हम डूजर्जर, जिसने दो मूलभूत तथ्यों के लिए इस दृष्टिकोण की आलोचना की है, के शब्दों में कहते हैं, पहले तो यह राजनीतिक विभिन्नताओं के निर्माण में वर्ग विरोध के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। दूसरा, यह वर्ग की बड़ी संकीर्ण परिभाषा देता है। यह सत्य है कि वर्ग संघर्ष के चिन्ह किसी भी युग में मिल सकते हैं, पर क्या इनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण और उतनी निर्णायक होती है जितनी कि मार्क्सवादी कहते हैं या विचारणीय है। 19वीं शताब्दी से पहले साधारण लोगों को सामान्य रूप में राजनीतिक जीवन में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। उनका शोषण किया जा रहा था और न ही उनकी स्थिति में परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देती थी, न ही उनके पास इसके विरुद्ध लड़ने के लिए कोई भौतिक साधन थे। फिर मास की वर्ग की धारणा बहुत संकीर्ण है। उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व एक प्रकार से वंशानुगत विशेष अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतिहास में अन्य भी उदाहरण हैं। डुवर्जर कहता है, कुलीन तंत्रीय समाज में कानूनी स्तर वंश परंपरा से मिला एक विशेष अधिकार था। क्रांति पूर्व के फ्रांस में कुलीन वंश में जन्म लेने वाले को सेना का अधिकारी बनने, गिरजाघर की पादरी या बिशप का पद प्राप्त करने, न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करने, विशेष अधिकार रखने का आनंद आदि का अधिकार मिल जाता था। यदि इन तथ्यों को समक्ष रखा जाए तो वर्ग के मार्क्सवादी धारणा से अधिक कार्यात्मक परिभाषा दी जा सकती है। निष्कर्ष: इस तथ्य के बावजूद कि आलोचकों के तर्क में कुछ दम है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक अत्यंत लोकप्रिय दृष्टिकोण रहा है। यह लगभग उतना ही लोकप्रिय रहा है जितना कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण या आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने राजनीति की पूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण और वर्णन करने में राजनीति वैज्ञानिकों की योग्यता को निश्चित और उल्लेखनीय रूप में प्रोत्साहित किया है। वास्तव में यह दृष्टिकोण राजनीतिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय तथा अर्थशास्त्रीय स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक विलक्षण और उपयोगी मार्ग बतलाया है, परंतु इसके साथ ही यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण अकेले ही राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकता। इसको केवल एक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कि कुछ सीमा तक राजनीति को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। इसको एकमात्र दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करने का मार्क्सवादी विचार कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।